सुर्खियों में
नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष पाठक। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सर्वाधिक मतदान के कारणों पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर जी। शेखर अय्यर सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी।
शेखर सर, सबसे जो बड़ा सवाल या पहला सवाल सीधे अपने श्रोताओं को हम वो कारण बताना चाहेंगे कि आखिर तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में जो ये ऐतिहासिक मतदान हुआ है, ये मतदान क्या इशारा कर रहा है वहां के मतदाताओं के रुझान को देखकर और चुनाव आयोग की चुनाव करवाने की तैयारियों को देखकर।
बिल्कुल संतोष जी, पहले दोनों राज्यों की जो कॉमन फैक्टर क्या रही है उस पर बात करेंगे। पहली बात है जो SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, जो मतदाताओं की जो सूची को लेकर जिस प्रकार से एक लंबा एक्सरसाइज चला और इस एक्सरसाइज के बाद एक प्रकार से वोटर के अंदर एक जागरूकता पैदा हो गई अपने अधिकार को लेकर, और पश्चिम बंगाल में खास करके इसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी रही। पहली ममता सरकार इसको विरोध की, फिर मामला गया कचहरी में, कलकत्ता हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने भी कहा नहीं, इसको करना ही है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है, संविधान कहता है कि आपको पूरा रिविजन करना है। फिर जाके रिविजन हुआ, विलंब हुआ, तो ये कारण है पश्चिम बंगाल में। और तमिलनाडु में भी क्योंकि SIR हुआ जिसमें इतना विवाद नहीं था, लेकिन फिर भी एक जागृति बढ़ी। दूसरी बात, तमिलनाडु में कम से कम 14.6 लाख नए वोटर जुड़े, यंग फर्स्ट टाइम वोटर, ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। दूसरा, तमिलनाडु चुनाव में महिलाओं की शिक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, फिर दूसरा युवाओं के अंदर जो ड्रग प्रॉब्लम तमिलनाडु में बहुत एक विश्व रूप लिया है, वो भी बड़ा मुद्दा रहा जिसमें महिला खास करके बहुत कंसर्न्ड थे। और तीसरी बात, इस बार तमिलनाडु चुनाव में एक नया फैक्टर, फिल्म अभिनेता है विजय, उनके एक नया पार्टी TVK करके, तमिल मेट्री कच्ची, ये मैदान में आने के बाद उनके जितने फैंस है उनका भी पूरा एकदम लगकर जम के क्यू में खड़े होकर वोट करने की सब जगह कतार लग गई।
एक बड़ा फैक्ट है जो मुझे लगता है कि हमें अपने श्रोताओं को सामने रखना चाहिए, 2026 एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तौर मतदान, और इससे पहले जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा जारी किया है कि इससे पहले तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मतदान जो इससे पहले हुआ था, तमिलनाडु में सर्वाधिक मतदान 2011 के विधानसभा चुनाव में हुआ था 78.29%, और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी इससे पहले जो सर्वाधिक मतदान हुआ था वो 2011 के ही विधानसभा चुनाव में हुआ था, यानी 84.72%। तो एक ही साथ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों ने उस साल भी 2011 के विधानसभा चुनाव में भी रिकॉर्ड बनाया था और इस बार भी रिकॉर्ड बनाया है। एक जो सबसे बड़ी बात जो आंकड़े ये हमें बता रहे हैं, महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले लंबी होती है, इस बार तो आंकड़े बता रहे हैं तमिलनाडु में, ये जो बताया जा रहा है जो टोटल जो आंकड़ा आया है 84.69 का, उसमें पुरुष है 83.57, महिला मतदाताओं ने 85.76, यानी पुरुषों से ज्यादा। तो सबसे पहले जरा तमिलनाडु का गणित समझाइए कि जो महिला मतदाता है पुरुषों से ज्यादा निकली मतदान करने के लिए, कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने इनको घर से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए प्रेरित किया होगा।
तमिलनाडु में पुरुष की तुलना में 10 लाख ज्यादा महिला वोटर्स हैं, नंबर वन। नंबर दो, जो महिला के मुद्दे, इस बार महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन गया था क्योंकि लगातार तमिलनाडु में ऐसे घटनाएं महिलाओं पर, बच्चियों पर जिस तरह घटना घटी है, जिसको लेकर राज्य सरकार की विफलता को लेकर भी बड़ा मुद्दा बन गया था, जिसमें बहुत प्रतिक्रिया जो महिला वोटर्स के अंदर एक ही बात थी, भाई हमें सुरक्षा चाहिए। अगर कोई वोटर कह रहा मुझे सुरक्षा चाहिए, इसका मतलब है वहां सुरक्षा नहीं है। तो ये यंग जो विमेन वोटर्स है जो काम पे जाते हैं, सबके लिए एक बड़ा मुद्दा रह गया था, वो बार बार कह रहे थे। नंबर दो, देखिए क्या हुआ है, SIR की वजह से जितने जो मरे हुए थे उनकी पूरा लिस्ट से बाहर हटा दिया गया, जो वहां स्थानीय लोग नहीं है उनका नाम भी हटा दिया, जिसकी वजह से जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वो कम हो गया, तो पहले से उसमें से जो वोटिंग हुआ है वो ज्यादा है, यानी टोटल जो वोटर्स की संख्या जो कहते हैं डिनोमिनेटर, पिछले चुनाव से नंबर ऑफ वोटर्स कम है लेकिन उन नंबर ऑफ वोटर्स से ज्यादा वोट किए, इसलिए आपकी ओनली 40% ज्यादा दिख रहा है। अगर आप 2021 से अगर कंपेयर करेंगे, इस बार जो टर्नआउट है 83.7% या 84% की बात हो रही है, इसमें अगर केवल नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से देखेंगे तो आप 2024 में 23.7 लाख वोटर्स ही किए हैं, नंबर ऑफ वोटर्स 2021 में 24.16 वोटर्स थे। बार बार पार्टियां के अंदर भी यही एलिगेशन था, भाई जो भर गए हैं, जो नहीं है लिस्ट में उन पर भी वोट डाला जाता है, फर्जी वोटिंग होती है, साइंटिफिक रिगिंग होती है, तो ये सारे चीजों को SIR ने दूर कर दिया। नंबर दो, जिस तरह सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी तमिलनाडु में, कहीं भी एक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, शांतिपूर्वक तर्क से पूरा तमिलनाडु में जबरदस्त वोटिंग हुई है। जो व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ने किया और साथ में जो इस तरह सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट तमिलनाडु भी की गई थी, जिसकी वजह से डर का माहौल बिल्कुल नहीं था। और इस बार इलेक्शन कमीशन ने कई बूथ ऐसे इलाके में भी खोल दिए जैसे जहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, चेन्नई और बड़े बड़े शहर, वहां किया गया। अब पश्चिम बंगाल में आ जाइए।
शेखर जी, पश्चिम बंगाल को लेकर पहले एक छोटा सा एक आंकड़ा रख देते हैं श्रोताओं के सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के पारित न होने के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके और आईएनडीआई अलायंस में शामिल तमाम राजनीतिक दलों पर कटाक्ष किया था उन्होंने। अब आंकड़े देखिए, जहां प्रधानमंत्री इस तरह से आलोचना कर रहे थे वहां तृणमूल कांग्रेस ये बता रहा था कि महिला मुख्यमंत्री उन्होंने दे रखा है। पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ, पुरुषों ने जो वोटिंग की वो सिर्फ 90.92 है और महिलाओं ने लगभग 2% ज्यादा यानी 92.69% वोट किया। तब ये मिला के कुल आंकड़ा पहुंचा 91.78। ये जो 2% महिलाओं ने जो ज्यादा वोट किया उसके लिए सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते?
देखिए, इलेक्शन कमीशन को बधाई देना होगा कि उन्होंने डर का माहौल जो हर विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में देखा गया, इस बार बिल्कुल जीरो था। क्योंकि लगातार क्या होता था, जो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है ऐसा एक माहौल बना देते थे, कहीं बॉम्ब गिरा, कहीं कुछ हुआ, कहीं अटैक हुआ, कहीं भी पोलिंग बूथ पे अटैक कर देते थे, जिसके वजह से डर फैला जाता था और कोई भी वोटर बाहर निकल के वोट आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन इस बार ऐसी दो तीन चीजें की इलेक्शन कमीशन ने। पहली तो जहां भी बड़ी सेंसिटिव बूथ है वहां पे काफी पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट रही और पुलिस ऑफिसर्स इसकी ट्रांसफर करके डीजीपी से लेकर कमिश्नर लेकर एसपी लेकर बहुत बदला गया, क्योंकि बार बार ये एलिगेशन था कि जो भी लोग सत्ता पे है वो पुलिस ऑफिसर्स पे और कर्मचारी पे बहुत प्रेशर डाल के अपने मनमानी करके चलाते थे। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने पहले से सबकी ट्रांसफर करा दी, इसको लेकर ममता बहुत नाराजी हुई। और दूसरी बात, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने पहले 48 घंटे के लिए जो मोटर बाइक में जो घूमते हैं उनकी बैन कर दी, क्योंकि रात भर ये लोग घूम के सबको डराते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर जो पूरा इंप्रूवमेंट हो गया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जो 152 जो सीटें थी वो नॉर्थ बंगाल की है और जंगल महल जहां आदिवासी और दलितों की वोट है, तो ये सारे जगह में जब डर का माहौल खत्म हो गया, जब उनको लगा कि हम जाके वोट कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और सत्यो जी, आपको याद होगा जब वामपंथी की सरकार चलती थी, यही ममता बनर्जी दिल्ली में कई बार आके बहुत बड़ी एलिगेशन की इलेक्शन कमीशन में और पार्लियामेंट में कि वामपंथी वहां पे साइंटिफिक रिगिंग करते हैं, डर का माहौल करते हैं। लेकिन 2011 के बाद सिचुएशन ऐसा रूज हुआ, ये एलिगेशन तृणमूल पे लग गया। ये सारे चीजों को इस बार 2036 चुनाव में पूरा बंद किया गया। पश्चिम बंगाल में भी महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया था। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन तृणमूल के जितने जो कैडर हैं उन पर हमेशा ये एलिगेशन रहा पिछले 5 साल में कि बहुत लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेकर महिला पर बहुत अत्याचार हुआ। आप जानते हैं आरजी कार हॉस्पिटल जो कलकत्ता का बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पे एक डॉक्टर के साथ क्या हुआ। फिर संदेश कली सुंदरबन में एक इलाका है, वहां के महिला के साथ तृणमूल के जो लोकल लीडर से क्या व्यवहार किए थे। ये सारे मुद्दे इतने बड़े हो गए थे तो सुरक्षा एक बड़ी बात हो गई, उसको लेकर एक रिएक्शन था। और तीसरी बात संतोष जी, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया चुनाव के बाद भी 500 कंपनी रहेंगे सीआरपीएफ के, कि चुनाव के बाद भी वहां पे हिंसा होता था, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। ये तीनों चीजों को रोकने के लिए काफी समय तक वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी रहेंगे। ये बात बार बार जब बताया गया, इसकी जब घोषणा हुई, लोगों को लगा कि पहली बार हम जाके वोट कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं होगा। क्योंकि तो लगातार पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस 21 में आपने देखा जिस तरह हुआ था, इस बार भी आपने देखा 2-3 बीजेपी कैंडिडेट पे तो अटैक हुआ ही। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल, दोनों राज्यों में खास करके बंगाल में ये डर का माहौल खत्म करके वोटर को अपने अधिकार बिना डर बिना ये जाके वोट कर सकते, ये स्थापित हुआ है पश्चिम बंगाल में। इस चुनाव में।
बिल्कुल शेखर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि SIR हो या चुनाव आयोग की तैयारियां, कानून व्यवस्था, शांतिपूर्ण मतदान, महिलाओं का घर से बाहर निकलना, इन सब ने मिलकर तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड बना दिया। एक और रिकॉर्ड बनाने की तरफ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग अग्रसर है, क्योंकि आज ही जो है चुनाव आयोग की एक रिलीज जारी हुई है, जो मुद्दा बना करता था विवाद का, वो बना करता था कि 17A फॉर्म 17A की जांच और EVM का स्ट्रांग रूम। तो चुनाव आयोग ने बाकायदा ये जारी करके बताया है कि पश्चिम बंगाल में जो 152 सीटों पर जो मतदान हुआ था, उसमें तमाम जो निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सामान्य परिवेक्षकों और 600 से अधिक उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दस्तावेजों की जांच सुचारू रूप से की गई। पश्चिम बंगाल में आम चुनाव के प्रथम चरण में जो उम्मीदवार थे, सभी 1478 उम्मीदवारों को जांच प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जांच की तिथि, समय और स्थान के बारे में सूचित किया गया था। और जहां मतदान हुआ है, उन 44,376 मतदान केंद्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई, यानी फिर से वोटिंग करने की नौबत नहीं आई है। तमिलनाडु की भी यही हालत है, वहां भी किसी भी बूथ पर, जो बूथ है 75,064 मतदान केंद्रों में से किसी में भी पुनर्मतदान की सिफारिश नहीं की गई है, वहां भी पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई है। और दोनों ही राज्यों में पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और जांच के बाद फॉर्म 17A और संबंधित सामग्रियों को RO की मोहर के साथ फिर से सील कर दिया गया और EVM के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसमें डबल लॉक सिस्टम, 2400 घंटे दो स्तरीय सुरक्षा की तैनाती और स्ट्रांग रूम के दरवाजे गलियारों को CCTV कवरेज शामिल है। जहां ऐतिहासिक मतदान हुआ, वहां जो ये फॉर्म 17 हो या स्ट्रांग रूम हो, इनको लेकर जो राजनीतिक विवाद उठाए जाने की कोशिश की जाती रही है पिछले कुछ चुनावों के दौरान, आपको लगता है इस बार नहीं उठेगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने सब कुछ सामने रख दिया है? बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए फॉर्म 17 का मतलब हम अपने श्रोता को बता दें, फॉर्म 17 का मतलब जब सारे वोट डाले गए, उसकी पूरी रिकॉर्ड, जितने वोट डाले गए, फलाना बूथ में इतना वोट डाला हुआ है, उसके रिकॉर्ड को कैंडिडेट्स के एजेंट्स के सामने वेरीफाई करके उसको सील लगा दी जाती है और फॉर्म 17 दिया जाता है। क्योंकि बार बार ये बात आती थी, इतने वोट डले लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो इतने वोट कम हो गए या ज्यादा हो गए, इस तरह की जो एलिगेशंस की कोई गुंजाइश नहीं होगी इस बार, क्योंकि सब एजेंट्स के सामने जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसको बहुत स्ट्रिक्ट रूप में फॉलो किया गया। जैसे आपने कहा कि सारा चीजें वीडियोग्राफ भी हुई है, एक ये बड़ा कारण है, क्योंकि ममता की तरफ से भी कही गई थी और कई बीजेपी के नेता भी बोल रहे थे भाई हमें डर है क्या होगा अंदर में, इस तरह की जो डर की बात थी उसको खत्म करते हुए आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया, सब कैंडिडेट के पास, सब एजेंट्स के पास हर बूथ का फॉर्म 17 है। तो ये सारे चीज इसलिए की गई कि बाद में कोई उंगली ना उठा सके, मेरा वोट काउंट नहीं हुआ, मेरा वोट की चोरी हुई, ये सारे चीजों को कोई स्कोप ना देते हुए हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने खास करके पश्चिम बंगाल में ऐसी तैयारी की है, जो तैयारी की वजह से मुझे जो लग रहा है कई लोग जो गड़बड़ करके जीतते थे वो बड़े नाराज हैं और निराश भी हैं।
शेखर जी बिल्कुल आपने सही कहा, अब चूंकि पश्चिम बंगाल में आधी परीक्षा तो पास हो चुकी है, अब दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण में जिस तरह से मतदाता और खासतौर से महिला मतदाताएं बढ़ चढ़ के निकली है, क्या पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी मतदाताओं में इसी तरह का रुझान देखने को मिलेगा, यानी पश्चिम बंगाल इस बार रिकॉर्ड तोड़कर भी नया रिकॉर्ड बनाएगा क्या?
बिल्कुल, उसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो इलाके है, ये 142 कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जाएंगे अप्रैल 29 तारीख को, ये सारे एरियाज को कहते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी, यानी कलकत्ता शहर की आसपास और कलकत्ता शहर की, यानी उत्तर कलकत्ता, दक्षिण कलकत्ता, हावड़ा, पूर्व बर्धवान, ये सारे शहरी इलाका है जहाँ पे वोटर की संख्या भी ज्यादा है, बूथे भी ज्यादा है। और यहाँ भी सारे बातें, कलकत्ता खास करके, यहाँ भी महिला सुरक्षा एक मुद्दा है, सुशासन को लेकर भी है और करप्शन को लेकर भी है, सारी चीजें हैं, और युवाओं के अपेक्षाओं को लेकर भी है, ये सारी चीजों को लेकर। और ये इलाके माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस की गढ़ है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो व्यवस्था है, ज्यादा सुरक्षा दी गई है, उसकी व्यवस्था ज्यादा हुआ है, ताकि जैसे बाकी इलाके में हुआ था, यहाँ भी बिना कोई भय या ये आके वोट डाले उसके बाद भी सुरक्षा रहे। क्योंकि बार बार हमने देखा है ये जो बम कल्चर जो पश्चिम बंगाल में लगातार पिछले 30-40 साल में हमने देखा, पॉलिटिकल वायलेंस चुनाव के समय, ये इस समय ऐसी एक रिकॉर्ड बनती जा रही है पश्चिम बंगाल की, एक कोई भी भूत ना अटैक होते हुए, कोई व्यक्ति का डेथ ना होते हुए, एक बार प्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के होने का संभावना बहुत ज्यादा ही है इस बार।
बिल्कुल शेखर जी आपने बिल्कुल सही कहा, और हम भी इन तमाम मतदाताओं से घर से बाहर निकल के अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए शेखर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
सुर्खियों में